سب سے پہلے ا ویری وارم ویلکم ٹو جاوید غامدی صاحب جو ہمیں جوائن کرے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب آپ نے بڑا سنجیدگی سے بڑا آپ نے زور دیا اس بات پر کہ ضرب عصب کے ساتھ ساتھ ضرب فکر بھی کیجیے. ابھی ضرب فکر ہوگی کیسے پاکستان میں؟
میں تو گزشتہ 30 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ طالبان نے انتہا پسندی کا جو افریق ہمارے معاشرے میں پیدا کیا ہے یہ آسمان سے نازل نہیں ہوا, یہ اسی مذہبی فکر کا موجود فساد ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے اور جس کی تبلیغ ہماری اسلامی تحریکیں اور ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. ہر طرف یہ ہے کہ جو فکر انہوں نے یہاں سے سیکھا ہے اس میں بعض اگلے اقدامات ایسے کر ڈالے ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ طریقہ کار کا اختلاف کہا جا سکتا ہے. بنیادی فکر میں ہمارے مذہبی مدرسوں کے نقطۂ نظر میں اور طالبان کے نقطۂ نظر میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے بادشاہ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے ارباب حل وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی سمجھے, کیونکہ اگر آپ 10-20 ہزار 2 ہزار لوگوں کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو فکر سے نئے لوگ پیدا ہو جائیں گے. اس لیے کہ فکر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بنیاد فراہم کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ چنگاری ڈال دیتا ہے. تو میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں اور اس زمانے سے کہتا رہا ہوں جب ہماری ریاست نے افغانستان میں جہاد شروع کیا تھا کہ یہ آپ ایک انتہائی غلط کام کر رہے ہیں, اس کے نتائج بہت خطرناک نکلیں گے, آپ نے مذہبی فکر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر کے در حقیقت ایک ایسی چیز اپنے نظم میں داخل کر دی ہے کہ جو بوتل کا جل ہے اس کے بعد یہ بوتل میں دوبارہ نہیں ڈالا جا سکے. یہی بات میں لکھتا رہا, یہی بات میں کہتا رہا.
بالکل.
اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو اقدامات کرنے جا رہے ہیں وہ خوش آئند ہے, ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو سوچیے کہ اس فکر کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا یا اس کی اصلاح کس طرح کی جائے گی.
جو انٹیریئر منسٹر نے کہا غامدی صاحب اور پھر اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ 10% کے قریب مدارس ایسے ہیں جہاں پر معاملہ غلط ہے یا پریشانی ہے, باقی ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟
جی میں آپ کا کرتا ہوں کہ جتنے مدارس ہیں اور جتنی مذہبی تحریکیں ہیں وہ سب اپنے مخاطبین کو یا اپنے طلبہ کو یہ بتاتے ہیں کہ کفر شرک اور ارتداد کا تلوار سے خاتمہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. وہ یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلموں کی کوئی حکومت اصلاً قائم ہی نہیں رہنی چاہیے, مسلمانوں کے پاس اگر قوت ہوگی تو وہ ان سب حکومتوں کو مٹا دیں, کیونکہ دنیا میں صرف اللہ ہی کی حکومت اور اللہ ہی کے ماننے والوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہمارے ملک میں قائم ہے یہ خدا کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہی, اس وجہ سے اس کے خلاف بھی جہاد کرنا جائز ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں سکھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, ان کے دلائل دیے جاتے ہیں. اگر یہ سب درست ہے تو اس کے بعد طالبان تو صرف آگے بڑھ کر ایک اقدام کر ڈالتے ہیں. یعنی میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مذہبی مفکرین جو کچھ پڑھاتے اور سکھاتے ہیں اس پر عمل کی ہمت نہیں رکھتے اور کچھ نوجوان آگے بڑھ کر یہ ہمت دکھاتے ہیں اور عمل کر ڈالتے ہیں. تو جب تک آپ اس فکر کو ایڈریس نہیں کریں گے, یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ اگر صحیح ہے تو پھر ہم سب کو ان پہ عمل کرنا چاہیے, اور اگر صحیح نہیں ہے تو ان کی غلطی پھر معاشرے کو سمجھنی بھی ہے, واضح بھی کرنی ہے اور اس پر پورے معاشرے کی تربیت کا کام بھی کرنا ہے. میں اسی کو کہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کو کاؤنٹر نریٹو کی ضرورت ہے مذہبی معاملے میں, اسلام اور ریاست کے باہمی تعلق میں. اس کاؤنٹر نریٹو کو جب تک ہم اپنی قوم کا نریٹو نہیں بنا دیتے اس وقت تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
تو جو آپ نے بات فرمائی اس سے تو یہ کافی زیادہ تعداد ہوگی ان مدارس کی جن کی طرف اشارہ ہے, تو کیا ایک اوور آل کرنا پڑے گا تمام مدارس کو, پھر دیکھنا پڑے گا ان کا نصاب یکساں ہو سکتا ہے تمام مدارس کا نصاب پاکستان میں؟
इसमें देखिए बात यह है कि मदारिस में जो असल गलती है वो इससे भी बड़ी है, वो ये है कि आप ये समझे कि मदारिस किस लिए कायम किए जाते हैं। इसका जवाब यह है कि दीन को उलमा बनाने के लिए, तो दीन को उलमा बनाना ये एक इख्तिसासी तालीमी बात है, यानी ये ऐसे है जैसे डॉक्टर बनाना है, जैसे इंजीनियर बनाना है, ये स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन के लिए क्या आप ये इजाजत देते हैं कि 5 साल के बच्चे को किसी डॉक्टरी के या इंजीनियरिंग के स्कूल में दाखिल कर दिया जाए? इसके लिए जरूरी होता है कि पहले 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम दी जाए। तो मेरे नजदीक तो किसी मदरसे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मदरसे देवबंदियों के हैं, बरेलवियों के हैं, हदीस के हैं, शियों के हैं, सुन्नियों के हैं, जैसे हैं रहने दीजिए। सिर्फ ये पाबंदी लगा दीजिए कि 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम के बगैर किसी तालिब इल्म को किसी दीनी मदरसे में दाखिला नहीं दिया जा सकता।
और यही बात अगर हम स्कूल्स में भी करें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इल्म की कमी है, तो क्या क्यों हम समझें कि मदारिस ही इल्म की दीनी तालीम दें? क्या मिनिमम बेसिक तालीम स्कूल्स को भी देनी चाहिए ताकि कोई और तालीम ना दे आकर?
ये यकीनन देखिए बात यह है कि एक है आलिम बनने के लिए तालीम देना, वो तो जाहिर है कि इख्तिसासी तालीम के इदारे होंगे जो स्पेशलाइज कराएंगे और उलमा पैदा करेंगे। एक है दीन की जरूरी तालीम, जो मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है, हमारे हर बच्चे की जरूरत है, वो तो उससे लाजमन हमारे तमाम तालीमी इदारे में मिलनी चाहिए। और मैंने उसके बारे में भी हमेशा ये कहा भी है और लिखा भी है कि उसमें अरबी जुबान, जरूरी अरबी जुबान सिखाकर कुरान मजीद को रीडर बना देना चाहिए ताकि बगैर किसी इख्तलाफ के लोगों को दीनी तालीम मिल सके।
मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक जर्नलिस्ट बनने के लिए या एंकर बनने के लिए आपकी कम से कम एक मिनिमम तालीम का जरूर तयन होना चाहिए। एक आलिम तो बड़े आगे की बात है, एक जो तालीम दे रहा है मदरसे में, उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए?
जब वो मदरसे में, मैं पहली बात तो याद कर रहा हूँ मानी कि मदरसे में दाखिले का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए 5 साल के 7 साल के 10 साल के बच्चे के लिए।
ठीक,
दीनी उलूम की दर्सगाह में आदमी उस वक्त जाएगा जब वो पहले 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम पा चुका है। ब्रॉड बेस तालीम का मतलब ये होता है कि उसको वो तमाम स्किल्स हासिल हो जाए जो आगे जिंदगी में उसके काम आएगी, वो जरूरी जबानें सीख ले, वो उन उलूम फनून की बुनियाद हासिल कर ले कि वो अपने बारे में ये फैसला कर सके कि मुझे कल डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या दीन का आलिम करना है। तो जब तक एक बच्चे को आप बारहवीं, बच्चे का बुनियादी हक है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपने बच्चे के बारे में 5 साल या 6 साल की उम्र में ये फैसला करूं कि वो डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है। मुझे पहले उसको 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम देनी है, इसमें दीन की भी जरूरी तालीम होगी, वो हमारे हर तालीमी इदारे को देनी चाहिए, यक्का तौर पर देनी चाहिए, पूरे मुल्क में देनी चाहिए, हर मदरसे और हर तालीमगाह को देनी चाहिए। इसके बाद एक तालिब इल्म फैसला करेगा कि मैंने मेडिकल कॉलेज में जाना है, मैंने दीनी मदरसे में जाना है। मेरे नजदीक दरअसल गलती है वो ये है कि 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम के बगैर हम 5-7 साल के बच्चों को मदरसे में भेजकर उनके सपुर्द कर देते हैं कि वो जिस तरह चाहे उनकी शख्सियत की तामीर करें और उनको खुदा ने जो कुछ भी बनने के लिए पैदा किया हो उन्हें जबरन दीन का आलिम बनाओ।
राइट, ये तो स्टूडेंट का क्राइटेरिया हो गया, लेकिन टीचर जो हैं उनकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कहाँ से? क्योंकि अभी तक कोई पता नहीं होता कि आपने एग्जैक्टली कितना पढ़ा हो, कोई एग्जाम हो ऐसा जो आपने पढ़ा हो जिसके बाद आप पढ़ा सकें क्या? इस सब तो कोई भी आकर दीन की तालीम दे देता है, नॉट एवरीवेयर लेकिन कई जगहों पर। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या सेट करना चाहिए एक उस्ताद का जो दीन की तालीम दे?
अगर वो उस उस्ताद ने हमारे किसी स्कूल में तालीम देनी है तो उसके लिए मेयारात पहले से मुकर्रर है, यानी ये मालूम है कि हम प्राइमरी के लिए, हम मिडिल के लिए, हम सेकेंडरी स्कूल के लिए किन असाबका को देंगे, उसके लिए तय है। जाहिर है कि उसमें अगर कोई शख्स मजहबी तालीम देने भी आ रहा है या कुरान मजीद पढ़ाने के लिए आ रहा है तो उसको भी स्थापित होना चाहिए, उसके पास भी कोई डिग्री होनी चाहिए, उसको भी कोई सनद लेके आना चाहिए ताकि वो तालीम दे सके। गैर मामूली अहम इलम तो पैदा हो जाते हैं माशरे में, उनको किसी डिग्री की या सनद की जरूरत नहीं होती, लेकिन आम तौर पर हम कुछ मेयारात बनाते हैं, वो मेयारात हमने अपने स्कूलों के लिए बना रखे हैं, वही मेयारात है जिनका इतलाक हर तालीमगाह पर करना चाहिए। रही ये बात कि फिर 12 साल की तालीम पाने के बाद इक्तिसादी तालीम के लिए कोई शख्स दूर रस्ते में जाता है, तो मेरे नजदीक उसमें हमें कोई मेयारात मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है। वो देवबंदियों के होंगे, बरेलवियों के होंगे, वो अहले हदीस के होंगे, वो अपने लिहाज से अपने उलमा के जरिए से तालीम देंगे। तमाम फितना यहां से पैदा होता है कि हम 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम से बगैर उनको दीनी मदरसे में भेजते हैं।
ठीक, जहाद का जो असल मफहूम है उसके हवाले से आपने खुद भी कहा, वहां पर आकर कंफ्यूजन फैलना शुरू होता है। क्यों अभी तक हम एक बकायदा कंसेंसस देकर नहीं बता सके कि क्या जहाद के जिम्मे में आएगा, क्या नहीं आएगा? आप क्या असल मफहूम से आगा हम कर पाए हैं अपनी कौम को इस वक्त?
अभी तक तो नहीं कर सके जी, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने ये बताने की सही की है कि इस्लामी शरीयत में जिहाद सिर्फ जुल्म और ज्यादती के खिलाफ होता है, वो कुफर के खिलाफ नहीं होता, वो शर्क के खिलाफ नहीं होता, वो गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं होता, वो किसी जमीन को हथियाने के लिए नहीं होता, वो किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ जुल्म और ज्यादती के खिलाफ होता है। इस्लाम में जिहाद का हुक्म असलन फितने और प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए दिया गया है, और ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों के पास ताकत हो तो वो फितने और फसाद का खात्मा करने के लिए, जुल्म और ज्यादती का खात्मा करने के लिए तलवार उठाएं। ये एक मुकद्दस जंग है और इसको हर हाल में रियासत को करना होता है, ये किसी फर्द का काम नहीं है, ये हुक्म किसी फर्द को दिया ही नहीं गया।
इसके ऊपर कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा गांधी साहब, कैसे इकट्ठे कैसे करेंगे लोगों को इसके ऊपर, आपकी क्या सजेशन होगी?
जिस दिन रियासत ये फैसला कर लेगी कि उसे लोगों के अंदर कंसेंसस पैदा करना है, तो जाहिर है पहला कदम लोगों की एजुकेशन का होगा। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि खुद रियासत का कोई नुकसान नजर ही नहीं है,
और जब रियासत जी अगर रियासत खुद प्राइवेट तंजीमों की मदद करना शुरू कर दे तो फिर क्या कंफ्यूजन कैसे ठीक होगी जहाद के मफहूम के बारे में?
यही तो जुल्म हुआ है, यानी जो मजहबी फिक्र हमारे यहाँ मौजूद था वो तो पहले से मौजूद था, जब रियासत ने उस मजहबी फिक्र को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया तो सारी खराबी वहां से पैदा हुई, क्योंकि अब लोगों के पास हथियार आ गए, उनके पास रुपया आ गया, उनकी तंजीमें बन गई, उनको रियासत की बहुत बड़ी ताकत यानी हमारी फौज की सरपरस्ती हासिल हो गई, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि खुद फौज से ट्रेनिंग पाई बल्कि उसको भी ये दावर कराया कि वो उसका पालू है, तो नतीजा उसका ये निकला कि फिर इतनी ताकत उनके पास आ गई कि जब उन्होंने अपनी बंदूकों का रुख खुद हमारे सीने की तरफ किया तो हमें अंदाजा हुआ कि हमें किन लोगों से लड़ना पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज दुनिया की बड़ी अफवाज में से है, और आप अंदाजा कीजिए कई महीनों से लड़ रही है, और अभी तक ये मजीद हमको नहीं मिली कि इन लोगों का खात्मा करने में वो कामयाब हो गई।
गामदी साहब, अब तो जो हुई एपीसी उसमें ये खदशात दिए गए आर्मी चीफ के सामने भी और दीगर अफराद के सामने भी, और कहा गया कि अब हम बिल्कुल माजी भुला दें, बेरी द पास्ट, और आप सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके ख्याल से क्या अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि अब मामला ठीक करना है, आपको क्या लग रहा है?
मैं तो हुस्नगन रखता हूं, और क्योंकि इस वक्त हमारी फौज हमारी हिफाजत के लिए लड़ रही है, इस वजह से यही मुनासिब समझता हूं कि उसकी बात को बावर किया जाए, उसकी कुछ सुनाई की जाए, इस वक्त कोई इंतजार न पैदा किया जाए, लेकिन ये दुआ जरूर करता हूं कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को सच बोलने की तौफीक दे, ये कौम को कौम की क़यादत को धोखा न दे, और ये फैसला आखिरी मरतबा कर ले कि ये कभी आइंदा किसी मजहबी फिक्र को या किसी मजहबी तंजीम को या किसी मजहबी नुक्ता नजर को या किसी मजहबी जज्बे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मजहबी तंजीमों को कभी इसका हक नहीं देंगे कि वो अपने हाथ में बंदूक उठाएं, और ये अपने मकासद के लिए कभी उनको इस्तेमाल नहीं करें।
आप दोबारा मैं ज़र्ब फिक्र की तरफ आऊंगी। जाहिर है फौज का काम ये होता है कि जाके दुश्मन से लड़े, हमने ये काम अपनी फौज को दिया, वो कर भी रही है, सब कोई महास पे लड़ रही है, लेकिन सोच को कैसे खत्म किया जा सकता है? ये थॉट्स, ये जो पहले अमेरिकन जंग में भी ये बात बड़ी जेर बहस आई कि आप माइंड्स हार्ट्स कैसे जीतेंगे लोगों के, उनकी फिक्र कैसे बदलेंगे, ये कभी हो भी सकता है या नहीं हो सकता?
यकीनन हो सकता है, जब कोई मुआशरा ये फैसला कर लेता है कि उसे इसके लिए जद्दोजहद करनी है तो होता है। आपके इलम में होना चाहिए कि सर मगरबी मुआशरे में जब लोगों ने यह फैसला किया था कि वो रिफॉर्मेशन की तहरीक चलाएंगे और उन्होंने पूरे के पूरे माशरती नज्म को बदल कर रख दिया, और वो पोप जिसकी सल्तनत पूरी की पूरी पूरे यूरोप पर कायम थी, एक वक्त ऐसा आया कि वो वेटिकन की दीवारों में महदूद होकर रह गया। इस तरह से बड़े बड़े मार्ग के दुनिया में लोगों ने अंजाम दिए हैं। हमारी कौम को भी ये फैसला करना चाहिए कि वो इस मजहबी फिक्र की गलती को न सिर्फ ये समझेगी बल्कि सही फिक्र का भी इल्म हासिल करेगी। ये जैसे ही हम फैसला कर लेंगे उसके बाद रास्ता खुल जाएगा।
जो अभी हमने हालिया दिनों में देखा कि सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई मौलाना अब्दुल अजीज के एक बयान के खिलाफ, क्या आपके ख्याल से कोई इस किस्म की तहरीक नजर आ रही है आपको पाकिस्तान में?
सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, सिविल सोसाइटी ने एक मुकाबला किया और बस। पहला मरहला ये है कि क्या इसका मुकाबला आप सेकुलरिज्म से करेंगे? मैं बारहा ये कह चुका हूं कि मुसलमानों के मुआशरे में सेकुलरिज्म का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये तजुर्बा तुर्की में करके देख लिया, क्या हासिल हुआ? मुसलमानों के मुआशरे में जब आप इस्लाह करना चाहें तो आपको एक मुतबादल मजहबी फिक्र देना होता है, एक काउंटर नैरेटिव पेश करना होता है। सिविल सोसाइटी के लोग, दानिशवर, सहाफी अगर ये फैसला करें कि वो जितने अहम मामलात हैं उनके बारे में अपने आप को एजुकेट करेंगे, तो मैं आप तर्क करता हूं कि इतनी बड़ी तहरीक उठ सकती है रिफॉर्मेशन की कि जिसके मुकाबले में ये मौजूदा मजहबी फिक्र और इसके बड़े बड़े तने रेत की दीवार साबित हो।
जो खास तौर पर से जहाद के मफहूम के हवाले से भी हमने कहा कि कौम को नाचना है, उनको तालीम दी जाए, एक नैरेटिव कलेक्टिव बनाया जाए, अगेन इस तरह पाकिस्तान में आपको कौन से, अगर आपसे कहूं कि नाम ले दें कुछ शख्सियात का जो ये काम कर सकती हैं, तो किसका नाम लेंगे आप?
मेरा अपने एहसास में भी कि नाम लेना कुछ ज्यादा मौजूद नहीं होता, इसमें बहुत से मबाइस पैदा हो जाते हैं। ज्यादा अच्छा ये है कि रियासत इसकी जरूरत महसूस करे, माशरा इसकी जरूरत महसूस करे, सिविल सोसाइटी इसकी जरूरत महसूस करे कि उन्हें मजहब के बारे में एजुकेट होना है। वो जैसे ही ये जरूरत महसूस करेंगे उनको अपराध को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। खुदा का कानून ये है कि वो हर दौर में ऐसे चंद लोग जरूर पैदा कर देता है कि जो बिल्कुल सही तरीके से सही नुकता नगर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसकी अहमियत रखते होते हैं कि वो लोगों के जहनों को मुतमिन कर सके। अगला दर्जे में दिक्कत नहीं होगी, पहले लोग फैसला तो करें एजुकेट होना है या नहीं होना।
ठीक, लेकिन गावरी साहब, दीन में गलत तशरीह करने वाले की या लोगों को गलत तरफ ले जाने वाले की, चाहे वो जहाद के हवाले से हो चाहे किसी भी मामले के हवाले से हो, उसकी सजा क्या है?
इसी भी बात यह कि जब तक कोई आदमी एक गलत बात कर रहा है तो हम उसकी बात का जवाब बात से देंगे। जब वो इस्तदलाल कर रहा है तो उसके मुकाबले में इस्तदलाल करेंगे। वो इससे आगे बढ़कर अगर बंदूक उठाता है तो वही करेंगे कि जो इस पर करें।
ठीक,
तो मेरे नजदीक जब मामला डायलॉग का है, बातचीत का है, गुफ्तगू का है, तो उसमें किसी कोई सजा देने का सवाल नहीं है, तो बात होगी। हाँ, वो तशद्दुद पर आमादा हो जाए या तशद्दुद पर लोगों को आमादा करे या लोगों को इस बात की तरगीब दे कि उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फलां को मारो, उसके बाद आप उसके खिलाफ इकदाम करेंगे। और उस इकदाम के लिए कुरान मजीद ने बड़ी ही सख्त सजाएं बयान कर दी है, ये बता दिया है कि जो लोग इस तरह फसाद बरपा करने के लिए उठ खड़े हो उनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उनको इब्रतनाक तरीके से कत्ल भी किया जा सकता है, उनके हाथ पांव भी मुखालिफ सिंतों में काटे जा सकते हैं, उन्हें सलीब भी दिया जा सकता है, उन्हें इलाका बदर भी किया जा सकता है। ये सब सूरह मायदा में बयान कर दिया, लेकिन ये जरूरी है कि नौबत वहां पहुंच जाए कि जहां कोई शख्स लोगों की जान माल आबरू से डरता हो रहा हो। इससे पहले अगर वो गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, बहस कर रहा है, मुनाजरा कर रहा है, मुजादला कर रहा है,
कानून बनाना पड़ेगा इस फंडिंग के हवाले से, चाहे सिर्फ मदारिस ही क्यों ना हो, कहीं भी, चाहे एनजीओ हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मदारिस हो, बाहर से फंडिंग क्यों आए?
ये तो एक बिल्कुल बड़ी ही बात है कि आपके मुल्क में जो इदारे कायम है, हुकूमत को देखना चाहिए कि उनको सरमाया कहां से मिलता है, वो खाब मजहबी इदारे हैं, खा वो गैर मजहबी इदारे हैं, वो किसी भी नौयत के इदारे हों, उन सबके बारे में ये जानना चाहिए कि उनके पास वसाइल कहां से आते हैं। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात वसाइल और वसाइल का मंबा दोनों गैर मामूली किरदार अदा करते हैं और बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। इसके बहुत से शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं और हम देख चुके हैं कि बहुत सी हुकूमतों ने, बहुत से मुल्कों ने, बहुत सी कुव्वतों ने सरमायाकारी करने की कोशिश की और अपने अपने नुक्ता नजर को फैलाने के लिए इदारे भी यहां कायम किए। इस वजह से रियासत को हर मौके के ऊपर पूरी तरह बेदार रहना चाहिए कि लोगों के पास रुपया कहां से आ रहा है, वो कहां से खर्च कर रहे हैं। इस मामले में तो कोई हुकूमत अगर खामोश बैठी रहेगी या बेगाना रहेगी या बेपरवाह रहेगी तो बदतरीन नतायज मार्च को भुगतने पड़े।
गामदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जावेद गामदी साहब ने तफसीलन बताया मदारिस की रिफॉर्मेशन के हवाले से। बड़ा अहम नुक्ता ये है कि 12 साल तक आप बेसिक तालीम का हक हर बच्चे को दें, उसके बाद आप उनको मदारिस के अंदर जरूर दाखिल